राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 4 अप्रैल 1993 को प्रातः लगभग 10 बजे चूरू में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।
कि सभी बात करी हूँ सेवकाई जय विदे मिले जानकी आई सेवा करूंगा। तो भगवान राम जी कहते हैं सखा शोध त्याग उबल मोरे सब विधि घटव काज में तुरे लोक और परलोक सब काम करूंगा। उसने कहा भाई जानकी जी को मैं ला दूंगा इतना काम मैं करूंगा तू इतना कर मैं सब करूंगा सब काम करूंगा। तो सब काम करते है भगवान ये पहले हम सन हो जाता है। तो भगवान के ठगने की एक रीत है। मैंने एक देर कथा सुनी रामायण कथा हो रही तो याद नहीं पंडित जी कौन थे पर कथा सुनी उसमें एक कथा में उन्होंने प्रसंग बताया कि ये व्यापारी होते हैं ना ये बड़े होशियार कहें चाला क्या क्या कहें भाई नाराज नहीं हो जाओगे बड़े चतुर होते हैं बड़े बुद्धिमान होते हैं यूं कह दें बड़े चालाक होते हैं अर्थ एक ही होता और चालाक करने बुरा लगता है बुद्धिमान राजी हो जाते हैं। वो यार सो ही है बड़े होशियार चालाक और कहें नीचा बड़े ठग होते हैं तो ये क्या करते हैं कि व्यापार जिसके हाथ में होता है उस स्त्री को जाकर डाली देते हैं ये यहाँ दबेगा माने और जल्दी से इसको कल देखते हैं इसकी युक्ति ये है यहाँ दबेगा जहां उसकी कमजोरी होती वहां से पकड़ते हैं फिर चोरी नहीं करते। इस तरह से भगवान की भी कमजोरी है भगत जानते हैं उसको वहां से भगवान पकड़े तो तू नहीं करेंगे फिर भगवान की कमजोरी है भगवान की कमजोरी है रामायण में लिखा है भगवान की कमजोरी हाँ एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की अनन्य भाव से और किसी के आसर नहीं एक आश्रो और आसरो छोड़ आसरो भी वो कौन कन्हई को बनवारी आज मायरो भरजा नानी भाई को और आसरो छोड़ आसरो एक अनन्य आश्रे तो अनन्य भाव से भगवान को भजो तो भगवान अनन्य भाव से आपके हो जाए यहाँ कमजोरी है भगवान की सरल हो जाए फिर भगवान क्यों नहीं करते सरल हो गया भाई। विभीषण ने कहा महाराज राक्षस है कि कोई परवाह नहीं मम पर शरणागत भय हारी शरण आ गया तो शरण होना ये सुगम स्थल बड़ा श्रेष्ठ है भाइयों बहनों अभी अभी इसी क्षण हे नाथ मैं आपकी हूँ हे नाथ मैं आपका हूँ इतना तो हो जाओ इत हो गए हो तो गया अब अनन्य भाव है और का आश्रय छोड़ दे धन रखो गृह रखो कुटुंब रखो पर आश्रय नहीं उनके आस आस एक आस रो एक बल एक आस विश्वास एक राम घन श्याम तो समय से ज्यादा हो गया भाई बोलने का व्यसन है भाई व्यसन विष्णु स्वभावे और जागर राजिया तो आप भगवान की शरण हो जाओ ये हमारे को समुद्र नहीं यार शरणागत की बात बताओ तो भगवान के चरणों के शरण हो जाओ है निश्चिंत अभयम सर्वभूत भगवान के तुम मेरे अनन्य शरण हो जाओ निर्भय करना मेरा काम शरण होता भक्त का काम अभय करना भगवान का काम प्रेम करना दोनों का काम नारायण 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 तो ये जो मानव जीवन है उसका आरंभ बाल्यावस्था से होता है तो बाल्यावस्था से ही बालकों को तैयार होना चाहिए अभी से आप अच्छे श्रेष्ठ हो जाएंगे तो अगर बहुत अच्छे आप नागरिक बनेंगे बालकों की प्राय ऐसा होता है कि पर हमारे पर क्या जिम्मेवारी है हम तो कह रहे पालन कर दिया पढ़ दिया कर दिया इतना ही है ठीक है ये मेरी खुद भोगी हुई बात है क्योंकि मेरे जितना अनुभव तो मेरी जितनी अवस्था होने से होगा तो आपको उतना अवस्था आपको पता नहीं है परंतु हम तो इसी अवस्था से आए हैं हमारे जिस बात का भी अनुभव है जवानी का भी अनुभव है वृद्धावस्था का भी अनुभव है हम जानते हैं भस्वावस्था में प्रायः गफलत रहती है परवाह नहीं रहती समझते भी है हमारे कोई अधीन बात ही नहीं है हमारे पर कोई निर्भर नहीं है हम जैसे खुले 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 से ऐसे विपदा लगती है तो ऐसे नाकाल विद्यार्थी के लिए उचित है कि पहले से ही तैयार हो जाए जैसे ध्रुव है प्रहलाद है बालक थे तो बाल्यावस्था से ही वे भक्त बने तो बच्चे ऊंचे दर्जे के भक्त हो गए जिन भक्त प्रहलाद ध्रुव जी महाराज बड़े इनकी महिमा आती है तो ये बड़े क्यों हो गए बचपन से ही ऐसे लग गए प्रहलाद जी महाराज खेलते थे ये प्रहलाद जी महाराज पहले हुए हैं ध्रुव जी पीछे हुए हैं तो प्रहलाद जी महाराज हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को इनको आदिदत्य कहते हैं और ये वराह कल्प है तो वराह अवतार पहले हुआ सबसे पहले वराह अवतार होकर के और नृसिंह अवतार होकर के इनको माना है तो वराह अवतार है तो इस कल्प का आदि अवतार है ये पहले हुए प्रहलाद जी महाराज तो प्रहलाद जी महाराज खेलते थे तो बच्चे थे खेलते खेलते चले गए तो एक माई को देखा वो उसी कुमारी श्रिया दी वो कुमारी थी तो वो क्या कर रही है कि वो बर्तन बना करके कुम्हार सुखा देते हैं जब घाम में खूब सूख जाते हैं तब उनका अवयव उसको पकाते हैं तो फूस कचरा लगाकर अवा चिड़ करके उसमें ठीक ढंग से और फिर आग लगा देते हैं जिससे ये पक जाते हैं तो उनके निकालने का ढंग होता है वो काम करते भी जानते हरेक को पता नहीं है आपको मेरे को अभी कह देगा वहां लगा दो तो हम नहीं लगा सकेंगे सामान सब होने पर भी सब बर्तनों को कैसे पकाना चाहिए सब जितने बर्तन सबको आंच आनी चाहिए ऐसे ढंग से रखा जाता है आग सुलगाने से आग सुलगती वो सबके सब पक जाते हैं ईट सबकी सब पक जाती है चूना के पत्थर सबके सब पक जाते हैं उनके लगाने का ढंग है उनके वो रख करके आग लगा दी आग लगा देने पर उसको याद आया कि एक बर्तन में बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे अब कई बच्चे दे दिए हांडिया और पड़ी से ऐसे ही सूखी खुली, उसने एक वो बच्चे दे दिए। तो विचार था उसी भगत भगवान की, तो बच्चे दे दिए। विचार किया बच्चे इसमें दिए हुए हैं, तो भी पकाना है तो इसको बाहर रख देना है, इसको कच्चा ही रख देना है, पकाना नहीं है। वो तो याद नहीं रही, सब उसको भी चिन लिया। अब चिन दिया और घास फूस लगा कर आग लगा दी। आग लगा देने पर पता लगा कि जो बच्चों वाली आड़ी थी वो भी इसमें लग गई। अब वो कहाँ है इसको उस पता नहीं, आग लग गई। अब खोला भी जाए तो पानी होती है और पता उसका लगता है नहीं, और जितने ही आग लगे वो पहले ही मर जाएंगे, तो खोलने से भी कोई फायदा नहीं। अब क्या करें, बड़ी व्याकुलता हुई, बड़ा दुख हुआ मन में कि बच्चे मर जाएंगे, तो अब कौन रक्षा करे। तो भगवान का नाम लेने लगी, भगवान का नाम ले और आवा के बाहर बाहर, आवा कहते हैं नाय कहते हैं ऐसा नाम उसका, उसके बाहर बाहर घूमे और नाम ले रही थी। प्रहलाद जी महाराज खेलते खेलते चले गए, तो प्रहलाद जी पूछा, अरे भाई तू क्या कर रही है। महाराजा राजकुंवर थे, राजूरी महाराजा मेरे से भूल हो गई, जिसमें बच्चे से बिल्ली के उनको मैंने आवा में चढ़ लिया और आग लगा दी, अब वो जल जाएंगे। तो उपाय मेरे पास कुछ नहीं रहा, अब कुछ नहीं। अब खोले तो अभी भी बच्चे जीवेंगे कि नहीं, वो तो बच्चे कोमल कोमल बच्चे होते हैं, थोड़ी आंस लगते तो मर जाएंगे। तो उपाय कोई नहीं है, तो ऐसी जगह भगवान रक्षा कर सकते हैं। अकर्ण कर्ण दयाल मृग अपना को सुखदेव, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ। ईश्वर किसको कहते हैं, करने में और न करने में और उलट फेर करने में सर्वसमर्थ, तो वो ईश्वर है। तो ईश्वर ही रक्षा कर सकते हैं, और किसी ताकत से रक्षा करे। इस वास्ते ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ, मैं करती हूँ, क्योंकि तो ईश्वर रक्षा हो जाती है। मेरा ईश्वर का क्या नहीं हो सकता, असंभव को संभव भगवान कर दे। जिसको कोई असंभव मानते हैं वो असंभव हो जाए ईश्वर की कृपा से। तो देखो जब हवा खोलो ठीक तरह से तो मेरे को बुला लेना, हाँ मैं आपको बुला लूंगा। प्रहलाद देखा कैसे बचता है आग ऐसी जिसमें कच्चे बर्तन पक जाए तो आंस काफी लगती है, मामूली आंस नहीं लगती है। नहीं तो पकेगा कैसे, बर्तन पकेगा तो आंस पूरी लगेगी। अब ऐसी पूरी आंस में छोटा कोमल कोमल बच्चे कैसे बचेंगे। तो प्रहलाद जी को बड़ा आश्चर्य आया, तो प्रहलाद जी को बुला लिया वहां खोलने का। कहते छह महीनों में पक कर तैयार होती, मानो ठंडी हो जाए साफ, बिल्कुल उसमें गर्मी न रहे, तब खोलते थे बर्तनों को। तो कई महीनों के बाद में उसको खोला, तो प्रहलाद जी को बुला लिए। बुला लिए तो प्रहलाद जी उनके सामने खोला गया, तो पांच बर्तन बिल्कुल कच्चे रह गए। जिस हाड़ी में वो थे चार तरफ चार हाड़ी थी, पांच भर रह गए। दिखा तो आंस लग जाए, तो आंस लग जाए तो मर जाए अभी, तो वो कच्चे रह गए। और बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए। प्रहलाद जी ने देखा वो ऐसी वृक्ष बात है, तो भगवान रक्षा करते हैं। उस दिन से बात दस की, प्रहलाद की बात बैठ गई कि भगवान का भजन है ये सबसे श्रेष्ठ। उसको याद रखो, ऐसी आग में भी भगवान पचा देते हैं, बचा देते हैं, तो भगवान का भजन करना चाहिए। लग गए भगवान के भजन में। पिता था वो तो द्वेषी था भगवान का, वो तो चाहता ही नहीं था, और ये लग गए भजन में। और पाठशाला में गए तो पाठशाला में सबको राम राम करो, मैं भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। एक बात याद आ गई बीच में, लोग कहते हैं कि राम राम करते हो ये तो राम राम तो पीछे से पैदा हुआ है, रामावतार अभी त्रेता में हुआ है, तो उसके नाम राम राम क्या, राम तो आपका है अभी पैदा हुआ है, तो राम नाम पैदा नहीं हुआ है वहाँ भगवान ये प्रहलाद जी के चरित्र में कृष्ण ग्रह गृहित आत्माया भागवत में। जैसे किसी को पेट लग जाए, भूत लग जाए, तो वो पागल हो जाता है, भावस भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बतन संभारे, तो भूत मतवारे होते, भूत लग जाए तो चाहे से बोलते हैं, तो उनके लिए कहता कृष्ण रूपी भूत लग गया उसको, कृष्ण ग्रह गृहता, तो कृष्ण रूपी ग्रह लग गया। तो कृष्ण नाम उस समय में था, कृष्ण अवतार राम जी से पीछे हुआ, तो इनको कोई भी अनादि के नहीं, अनादि नाम है भगवान के, ये कोई राम जी से ही पैदा हुआ ऐसी बात नहीं है। और नामकरण किया प्रहलाद ने रामायण में, तो ऐसा कहा कि महाराज इसका नाम वो रखिए जो वशिष्ठ राज आपने गुण रखा, आपने सोच रखा है, वो नाम लीजिए। तो पहले से नाम था तभी ना सोचा है वशिष्ठ जी ने, और पीछे राम नाम रखा है, तो भगवान के सब नाम अनादि, अवतार तो बार बार होते रहते हैं, परंतु भगवान का नाम ऐसे नहीं उसी दिन से नाम है, ऐसा नहीं है। भगवान अनादि है, भगवान के नाम अनादि है, भगवान की महिमा अनादि है, भगवान का आनंद अनादि है, भगवान की जो कुछ सब अनादि नित्य तत्व है वो, भगवान के सिवा प्रकृति प्रकृति का कार्य है, ये सब अनित्य है। तो भगवान का नाम वहां पहले था, ये बीच में आ गई बात, तो उसका नाम लिया, तो प्रहलाद जी ये बात सच गई, बैठ गई भीतर, किसी भी नाम लेना, नाम सोचने लगे। पिताजी ने बहुत समझाया बुझाया, माना नहीं, माने ही नहीं, पाठ पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा, तो राजकुमार थे ये, छोरा पर भी असर था, भी ये महाराज कुंवर है, राजा के लड़का है, क्योंकि छोरा क्या करते, राम राम करूं, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई क्या, पढ़ाई तो असली है, जो पढ़ाई नित्य रह जाए वो नित्य पढ़ाई, जो पढ़ाई इसी और फिर अनित्य नष्ट हो जाए, मर जाओ तो भूल जाए, वो अनित्य पढ़ाई, नित्य पढ़ाई में रोज नित्य विद्वान बन जाओ आप, असली विद्वान बन जाओ, विद्वान विद्वान वर विद्वान वरिष्ठ वरियान विद्वान वरिष्ठ, ये ज्ञान की भूमिकाओं में आता है। तो वो विद्वान वरिष्ठ होता है जो सातवीं भूमिका होता है, भूमिका नहीं करना भोगना ये नहीं है, यहाँ तो सेवा करना, मनुष्य जी की दो बातें खास है ध्यान देना, दो बात है, एक तो भगवान को याद करना और एक संसार की सेवा करना, ये दो काम मनुष्य कर सकते हैं, देवता सेवा कर नहीं सकते, वो ड्यूटी बजाते उससे सेवा होती है, वृक्ष सेवा कर नहीं सकते, उनके फूल पत्ते लकड़ी आदि से सेवा होती है, पशु पक्षी सेवा कर नहीं सकते, पशुओं से सेवा होती है, जो बैल को चलाते हैं, घोड़ा को चलाते हैं, इनको चलाकर अब काम ले लेते हैं, गायों को दूधते हैं, भैंसों को दूधते हैं, इसे काम ले लेते हैं, तो ये सेवा कर नहीं सकते, सेवा ली जा सकती है, देवताओं से सेवा ली जा सकती है, गर्मी है सर्दी है वर्षा है हवा है, इनके अधिष्ठाती देवता है, उन देवताओं की ड्यूटी पर ये अपना अपना काम करते हैं, वो ड्यूटी सब की सब रहती है मनुष्यों के अधीन, मनुष्यों के पास यज्ञ होते हैं, देव यज्ञ होते हैं, ऋषि यज्ञ होता है, पितृ यज्ञ होता है, इनसे इन देवताओं को पुष्टि पहुंचती है, और देवता अपना अपना काम करते हैं, मनुष्य यज्ञ आदि करके इनकी पुष्टि नहीं पहुंचाता है, तो देवताओं की वर्षा आदि ढंग से नहीं होती। आज जो उच्छृंखल हो रहा है ना संसार, ये उच्छृंखल होने से देवता भी उच्छृंखल होंगे, सर्दी और गर्मी और वर्षा पर ठीक ढंग से नहीं होगी, कहीं अतिवृष्टि हो जाएगी, कहीं अनावृष्टि हो जाएगी, कहीं बहुत ज्यादा कपत हो जाएगी, कहीं कम हो जाएगी, कहीं हवा ज्यादा चलेगी कहीं कम चलेगी, देवताओं में भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं क्योंकि देवताओं को खुराक नहीं मिलती। अग्नि में आहुति देने से देवताओं को पुष्टि होती है, अग्नो प्रास्ता होती सम्यक आदित्य उपराष्ट्र आदित्या जायते दृष्टि दृष्टि अन्नम तथा प्रजा, तो इसे सेवा होती है। सेवा करना काम मनुष्य का है, पशु आदि सेवा कर नहीं सकते, देवता भी नहीं कर सकते, पशु क्या करे बेचारे। तो इनकी सेवा हो जाए, इनको सुख पहुंच जाए, इसलिए ये बात। तो ये सेवा करना का काम है। अब सेवा की बाधा किसने लगती है, एक जवाब। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक कौन सा है, दूसरे अध्याय का 44 ये व्यवसायत्मक बुद्धि का वर्णन होता है, 41 से शुरू होता है 44 तक है। दूसरे अध्याय के 4 श्लोक है 41, 42, 43, 44 इनमें व्यवसायत्मक बुद्धि एक है, कोई एक होती व्यवसायत्मक निश्चय के हमें अपना कल्याण करना है, अपना तो उद्धार करना ही है, अपने तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, अपने जीवन मुक्त होना है, हमें संसार से ऊंचा उठना है। ये जो विचार है ये होता है व्यवसायत्मक बुद्धि। तो व्यवसायत्मक बुद्धि एक एक होती बुद्धि, और बहुत सारे रंगता से बुद्धि अब व्यवसायी नाम यह हम पुष्पन 43 में प्रकरण आया, 44 उपसंहार किया, 4 श्लोकों का प्रकरण है ये। तो किस किस व्यवसाय में बुद्धि नहीं होती, ये भाई है और बहन ध्यान देकर देखिए। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, संसार का सुख भोगना है और पदार्थों का संग्रह करना है, ये दोनों से बुद्धि भ्रष्ट होती है। भोग भोगना मात्र संग्रह मात्र से नहीं, भोग भोगने की इच्छा उद्देश्य भोग भोगना और संग्रह करने का ही उद्देश्य संग्रह करना। उद्देश्य ये बना लिया है कि रुपया इकट्ठा करना और सुख भोगना, ये जिनके उद्देश्य बन गए हैं वो परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकता, वो परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। व्यवसायत्मक बुद्धि एक अरे बहुत सघनता से बुद्धि अब व्यवसाय बहुत ही ऐसी है। तू एक कब होती है कब नहीं होती है कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग में प्रसक्त है ऐश्वर्य में प्रसक्त है, इसमें रात दिन लगे, इसकी संग्रह में सुख भोग में रात दिन लगे है, वे परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकती। परमात्मा तत्व की प्राप्ति एक निश्चय का मैं तो परमात्मा प्राप्ति का है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भुवन बुहार, अपना कल्याण करना है। इस वास्ते अपने कल्याण के लिए पक्का विचार हो जाता है तो फिर उसका काम चल पड़ता है। पक्का विचार होने पर दूसरे सहायक होता थे, जैसे गंगोत्री से ध्यान देना, गंगोत्री से गंगा जी की धारा निकलती है, वहां गोमुखी है ऐसा सुना है, मैं गया नहीं हूं, गोमुखी से एक धारा निकलती है खास गंगा जी प्रकट होती है। हिमवत प्रभवती हिमवती गंगा, हिमालय से प्रकट होती है वो गौ, छोटे से गौ धारा गौमुखी धारा है, वो धारा चलती है, वो धारा चलती उसमें नद नदियां तालाब और झरने और वर्षा ये सब उनके साथ हो जाते हैं। होते होते कलकत्ते के पास पहुंचती है तो उसमें समुद्र में चलने वाले जहाज चलते हैं गंगा जी की धारा में, इतनी बड़ी हो जाती है। गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी सिंधु शर्मा सन्नवती महासु नदी का खाता गया गंडिका, ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी नदियों गंगा जी मिलती रहती है। गंगा जी मिलते जमुना जी का नाम गंगा जी में नहीं मिले तो जमुना जी मिल गई गंगा जी, बड़ी बड़ी नदियां घाघरा जैसी नदी, बड़ी बड़ी नदी, सोन नदी बड़े बड़ा नदी है, बड़े बड़े झरने, बड़े बड़े नदी है, वे मिल जाते हैं गंगा जी में, तो सबका नाम गंगा जी हो जाता है, दूसरा नाम नहीं रहता, सब गंगा जी, गंगा जी में सब गंगा जी, पहले नाम अलग अलग होते हैं, तो इतना हो जाता। तो गंगा की धारा भगीरथ के बडेरों के उद्धार करने के लिए प्रकट हुई और समुद्र के किनारे उनके भस्म हुए बड़का थे, उनको ले जाने के लिए आई, तो उनका उद्धार करने के लिए गंगा जी एक चली वहां के लिए, तो एक गंगा जी ठीक चलने पर दूसरी सब जितनी नदियां सहायक हो जाती है। ऐसे मनुष्य का एक उद्देश्य बन जाए कि परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो खाना पीना सहायक हो जाता है, बातचीत सहायक हो जाती है, पढ़ना लिखना सहायक हो जाती है, एक उद्देश्य ही होता है। जैसे लोभी कोई काम करना करता है तो पैसा पैदा हो वही काम करता है, पैसा का नुकसान न हो जाए और अधिक से अधिक पैसा पैदा हो, सब काम उसके लिए होते हैं। ऐसे जिसका विचार हो गया पक्का कि हमें तो अपना उद्धार करना है, पर छोटे बड़े खाना पीना शौच स्नान आदि सब उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए होते हैं। सब साथ मिलके एक धारा में एक परमात्मा की तरफ फिर तो प्राप्ति हो जाती है, नहीं तो बहुत सारे अलंकार से गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, धन कमाओ अपने धन कमाओ, वाह वाह हो जाए अपने वाह वाह करो, कि लोग ज्यादा ज्यादा इकट्ठा कैसे भाई लोगों में महिमा हो जाए, तो बस ये व्याख्या नहीं दू। ऐसे अलग अलग कार्यों में लग जाते हैं वो परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उनका एक सिद्धांत है ही नहीं, उसकी तो बहुत सारा। जैसे नहर निकली, वो हरिद्वार से नहर निकली है गंगा जी की, बहुत बड़ा उसका प्रवाह है, बड़ा वो बहती है, गंगा जी आती है, हम यहाँ से जाते हैं सुरकी से अगर गंगा के किनारे किनारे चलते हैं, तो गंगा जी की नहर कितनी बड़ी होती है, वो बड़ी इतनी नहर है, अगर छोटी छोटी होती है उससे छोटी होती है, और खेतों में पानी पीता है तो खेतों में पानी देते 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 खत्म हो जाती है। बड़ा भारी प्रवाह भी अनेक जगह जाने से खत्म हो जाती है, और छोटा सा प्रवाह भी ठेर तक चले तो दूसरी सहायता करने वाली हो जाती है। ऐसे मनुष्य का उद्देश्य एक परमात्मा तत्व की प्राप्ति का हो तो सब जितने कार्य है परमात्मा की प्राप्ति में ही सहायक हो जाते हैं उधर ही, और जगह जगह काम करोगे यश भी हो जाए, वाह वाह भी हो जाए, कुटुंब में बैठे हैं हमारी इज्जत भी हो जाए, प्रदेशा भी हमारी हो जाए, सुख भी ले ले, आराम भी ले लें और भोग भी भोग लें, पैसा भी कमा लें, इकट्ठा कर लें, धर्म का अनुष्ठान भी कुछ कर लें, गंगा स्नान भी कर लें, रोजाना सुख भी भोग लें, ऐसे अनंत में बिखर जाती है तो धारा वो रहती नहीं, फिर परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि बहुत हो गई नहर तो निकली फैल गई। इतनी बड़ी नहर समुद्र नहीं पहुंचती और इतनी सी धारा गंगा जी समुद्र में पहुंच जाती है, क्यों जब तक समुद्र नहीं पहुंचे तब एक तरफ उधर ही चलती है, क्योंकि बड़का का कल्याण करना है, उधर ही भागल से भिजा रहा है, तो वह एक चलती है तो सब सहायता करने वाले हो जाती है। ऐसे अपने कल्याण का एक उद्देश्य होने पर उसका प्रवाह सब एक तरफ चलता है, सब सहायता, सुख भी सहायक होता है, दुख भी सहायक होता है, संपत्ति भी सहायक होती है, विपत्ति भी सहायक होती है, बीमारी भी सहायक होती है, स्वस्थता भी सहायक होती है, मान बढ़ाई भी सहायक होती है, निंदा भी सहायक होती है, सब सहायक हो जाती है, इसका सबका सदुपयोग होता है। वस्तु वास्तव में बड़ी छोटी नहीं है, उसका सदुपयोग भला है, दुरुपयोग न सदुपयोग होता है, तो सबकी सब अवस्थाएं सबकी अवस्था सब परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हो जाती है। तो एक निश्चय हो जाए तो सब काम ठीक हो जाता है। जो मैंने बताया शुभ इच्छा पहली भूमिका, अब शुभ इच्छा हो गई अब सब काम ठीक होगा। शुभ इच्छा क्या है? परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए जो चाहना है यही शुभ इच्छा है। नहीं तो आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तन, ब्रह्म लोक तक जावे थोड़ी फिर आए, वो शुभ इच्छा नहीं है। कर्म भी शुभ कर्म होते हैं शास्त्र की रीति के अनुसार, तो वहां के जाने वाले स्वर्ग आने कर्म शुभ होते हैं, पर संतों ने शुभ कर्म नहीं कहा। संतों ने कहा सब अशुभ है। दैव संपद विमोक्ष है, मुक्ति के लिए निष्काम भाव से किए जाए वे कर्म को शुभ कर्म, और जो भोग भोगने के लिए चाहे स्वर्ग के लिए किया जाए ब्रह्म लोग किए जाए सब अशुभ ही है। दुकान पर लिखते हैं शुभ और भाग्य लिखते हैं शुभ, क्या लाभ? शुभ लाभ जो शुभ परमात्मा की प्राप्ति है उसके लिए विचार वो शुभ है, उसकी प्राप्ति वो लाभ है। उसे लाभ भी नहीं किया वो लाभ क्यों? रुपया मिल जाए लाभ हो गया, मान मिल जाए लाभ हो गया, स्वास्थ्य हो गया लाभ हो गया, कुछ नहीं हुआ। लाभ वो होना चाहिए जो गीता में कहा है, जंगलम ध्वा चा परम लाभम मन्यते नातिरं ततः। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर कोई अन्य लाभ हो सकता है ये मानने में जानने में नहीं आता, और लाभ लाभ है ही नहीं। जिसका अंत हो जाए तो क्या लाभ हुआ? लाभ वो है अपरम लाभम न मन्यते, और लाभ इनसे बढ़कर कोई हो मान ही नहीं सकता वो। और यशनिष्ठ तो न दुखे न गुणना भी विचार लेते। गीता में 700 श्लोक है, 700 श्लोकों में ये श्लोक एक विषय में एक नंबर रखता है, इसकी जोड़ी का दूसरा श्लोक नहीं है। 22वां छठाध्याय 22वां श्लोक, यंग लब्ध हुआ था परम लाभम मन के नाधिगम तथा यशनिष्ठ तो न दुखे न गुणना भी विचार लेते। दो ही तो बात है, दुख मिटाना सुख लेना दो ही बात है ना। सभी संसार में जितने काम है उनमें लाभ और सुख तो लेना है और दुख मिटाना है, ये दो बात है। दोनों बात कही है इसमें। लाभ तो वो बताया कि जिससे बढ़कर लाभ कोई संभव ही नहीं है, आखिरी लाभ है। इंद्रिय वे फर्वाजर्थ बुद्धि आत्मा महान पर महत परम अभ्यक्त अभ्यक्त पुरुष पर अरे पुरुषा न पर गति आखिरी। तो उसको प्राप्त करना ये परम लाभ, इससे बढ़कर लाभ कोई है नहीं। और फिर कैसा यश में स्थित में स्थित होने गुणा भी दुख खेलना बिता लेते। गुरुतर दुख दिया जाए ऐसे जीते आदमी के टुकड़े टुकड़े किए जाए, पहाड़ों के बीच में आ जाए, महान आग में भट्टी में चढ़ा करके उसमें तेल में उबाला जाए, पर महान प्रदगता हुआ तेल उसमें डाल दिया जाए, बड़ा पके जब मनुष्य पक जाए, ये दुख है। ऐसे महान दुख से भी वो विचलित नहीं होता। संविद्या दुख संयोग वियोगम, दुख का संस्पर्श ही नहीं होता। तो सर्वथा दुख मिट जाए सर्वथा आनंद हो जाए ये मनुष्य का ध्येय है, ये इस श्लोक में कहा है।